यह कौंड भट्ट जी पहली कारिका की व्याख्या कर रहे हैं पुस्तक में, लिखा इन्होंने उद्धृत इति। आप लोग पुस्तक सामने में जरूर रखे होंगे, उसमें लिखा है उद्धृत इति। कारिका में कहा गया है ना शब्द कोष्ठुभ उद्धृत, उद्धृत उत माने ऊपर की ओर, हृत माने निकाला गया। तो समुद्र में से जो कोई चीज निकालेगा वह ऊपर की ओर ही निकालेगा, नीचे से ऊपर की ओर, तो उद्धृत इति। अब निकाला गया, उद्धृत माने निकाला गया, तो प्रश्न आएगा कि किसने निकाला। तो कर्ता का यहाँ पर उल्लेख नहीं है मंगलाचरण में, इसलिए आगे लिखते हैं अत्र अस्माभिः इति शेषः। माने इस मंगलाचरण में अस्माभिः शब्द जो है यह भी होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए अस्माभिः शब्द को जोड़ करके जो है मंगलाचरण का अर्थ करना चाहिए। तो क्या होगा कि अस्माभिः उद्धृतः माने हम लोगों के द्वारा यह जो है शब्द कौस्तुभ नाम का ग्रंथ उद्धृत किया गया। यहाँ एक बात आप जान लीजिए कि शास्त्र कहता है कि स्वयं के लिए कभी एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मया उद्धृतः नहीं कह करके अस्माभिः उद्धृतः किया कहा। मया आवाभ्याम अस्माभिः, अस्मद शब्द का तृतीया के बहुवचन में अस्माभिः प्रयोग होता है ना, तो मैंने भी अस्माभिः का अर्थ क्या क्या हम लोगों के द्वारा, ये गलत अर्थ है। अस्माभिः का अर्थ होगा मेरे द्वारा, यद्यपि वह बहुवचन है अस्माभिः, लेकिन मेरे भी तो बहुवचन है हिंदी में तो स्वयं के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर अस्माभिः है। तो अगर परीक्षा में आता है कि उद्धृतः का कर्ता कौन है, तो लिखना है कि अस्माभिः जो है वह कर्ता है। अस्माभिः माने कौन, भट्टोजी दीक्षित, ठीक है। तो इस मंगलाचरण में अस्माभिः शब्द का प्रयोग जो है वह शेष है, शेष है मतलब जो अनुक्त है, उसको उक्त नहीं किया गया, उसको कहा नहीं गया। आगे है भाष्याब्धेः शब्द कौस्तुभः उद्धृतः, कहा कि ये जो आपने कहा मंगलाचरण में कि भाष्य रूपी अवधि से माने समुद्र से शब्द कौस्तुभ को निकाला गया, ये कहने की क्या जरूरत थी, इतनी भूमिका बांधने की क्या आवश्यकता थी। तो वो उसी का जवाब देते हैं कि इति उक्तिस्तु, ये उक्ति जो है ये जो मंगलाचरण में कहा गया वो क्यों कहा गया, तो शब्द कौस्तुभ उक्तानाम अर्थानाम आधुनिक उत्प्रेक्षितत्व निराशाय, या इसलिए कहा गया। आप जानते हैं कि जिसमें जो प्रामाणिक होता है उस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं, और अप्रामाणिक जो बात होती है उसको लोग स्वीकार नहीं करते। अगर हम ये नहीं बताते, सीधे कहते कि शब्द कौस्तुभ नाम के ग्रंथ में जो अर्थ निर्णीत है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो कोई जो है ना किसी को संदेह होता कि ये शब्द कौस्तुभ प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, इसीलिए यहाँ पर ये लिख दिया गया भाष्याब्धे शब्द कौस्तुभ उद्धृतः। यह जो शब्द कौस्तुभ है यह मनमाना ग्रंथ नहीं है, इसका मूल जो है भाष्य रूपी अवधि है, महाभाष्य ही मूल है इसका। तो जब महाभाष्य को सब लोग प्रमाण मानते हैं, तो महाभाष्य का उल्लेख करने के कारण क्या हुआ, यह शब्द कौस्तुभ ग्रंथ भी प्रामाणिक माना गया। और शब्द कौस्तुभ जब प्रामाणिक माना जाएगा तो उसका जो सार संक्षेप लिखा गया है व्याकरण भूषण कारिका में उसको भी प्रामाणिक माना जाएगा। तो प्रामाणिकता को बताने के लिए यहाँ पर भाष्याब्धेः शब्द कौस्तुभ उद्धृतः ये कहा गया। इसी बात को ये लिखते हैं कि शब्द कौस्तुभ उक्तानाम अर्थानाम, शब्द कौस्तुभ में जो उक्त अर्थ है, अर्थ का अर्थ यहाँ सिद्धांत कर सकते हैं कि शब्द कौस्तुभ में जो उक्त सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का आधुनिक उत्प्रेक्षितत्व, माने कोई आधुनिक लोगों ने उस सिद्धांत को नहीं बताया है, या प्राचीन है और प्रामाणिक है, तो आधुनिक उत्प्रेक्षितत्व माने आधुनिक के द्वारा उत्प्रेक्षित, उत्प्रेक्षित माने रचित विरचित, तो आधुनिक किसी विद्वान के द्वारा ये विरचित है शब्द कौस्तुभ है, इसके निराश के लिए, इसके खंडन करने के लिए, इसको जो है ना दूर भगाने के लिए ही जो है हमने भाष्याब्धे शब्द कौस्तुभ उद्धृतः ऐसा मंगलाचरण में बोला। तो इससे मतलब आशय ये हुआ कि कि शब्द कौस्तुभ ग्रंथ जो है यह प्रामाणिक है, हाँ, इसकी प्रामाणिकता बताने के लिए ही जो यह है यहाँ पर भाष्य का उल्लेख किया गया है। आगे लिखते हैं, अन्यथा तन्मूलकस्य अस्य ग्रंथस्य अपि आधुनिक उत्प्रेक्षित सारत्वापत्तौ पाणिनीयानाम् अनुपादेयता पत्ते है। ताकि अगर ये मैं नहीं लिखता, भाष्य का उल्लेख नहीं करता, अन्यथा माने भाष्य का उल्लेख अगर नहीं करता तो तन मूलकस्य अस्य, यह जो अस्य माने यह जो व्याकरण भूषण सार ग्रंथस्य, यह जो व्याकरण भूषण सार ग्रंथ है वह किंग मूलक है, तो शब्द कौस्तुभ मूलक है, माने मूल में शब्द कौस्तुभ है, उसी का सिद्धांत संक्षेप में यहाँ बताया गया ना। तो तन मूलकस्य माने शब्द कौस्तुभ मूलकस्य, यह जो ग्रंथ है यह शब्द कौस्तुभ मूलक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में भी जो है आधुनिक उत्प्रेक्षी तत्व की आपत्ति होती, माने इस ग्रंथ के बारे में भी ये लोग सोचते हैं कि यह जो किसी आधुनिक लोगों ने इसको बनाया है। अगर हमने भाष्य का उल्लेख कर दिया तो ये बात लोगों के मन में नहीं आएगी कि किसी आधुनिक लोगों ने इसको बनाया है, क्योंकि इसका मूल जो है महाभाष्य है। तो अगर ये बात मन में आ जाती कि आधुनिक के द्वारा उत्प्रेक्षित है माने विरचित है, तो फिर क्या होता, पाणिनीया नाम अनुपादेयता आपत्ति है, फिर जो है पाणिनीय जो व्याकरण है हम उनके लिए ये अनुपादेय होता, माने इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाती। उपादेयता माने उपयोगिता, अनुपादेयता माने अनुपयोगिता, तो इसकी अनुपयोगिता हो जाती। तो यहाँ पर पाणिनियों के लिए यह ग्रंथ उपादेय बने, उपयोगी बने, और इसमें श्रद्धा उत्पन्न हो इसको पढ़ने के लिए समझने के लिए, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता को बताना जरूरी था, इसीलिए हमने भाष्याभ्य शब्द कौस्तुभ उद्धृत कहा। आगे लिखते हैं, तत्र निर्णीतः इत्युक्ति ही इतोप्यधिकम जिज्ञासुभिः शब्द कौस्तुभे द्रष्टव्यम इति ध्वनयितुम्। ताकि अच्छा ठीक है, आपने प्रामाणिकता बताने के लिए कहा भाष्याभ्य शब्द कौस्तुभ उद्धृत, लेकिन ये कहिए कि तत्र निर्णीतः एव अर्थ, ये जो तत्र निर्णीतः वहाँ पर बोला मंगलाचरण में, इति उक्ति कथम, ऐसी उक्ति क्यों कही गई, तो कहा कि इसलिए कही ये उक्ति है कि आप यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है, अगर आपको विस्तार से समझना हो, अधिक समझना हो, तो आप शब्द कौस्तुभे द्रष्टव्यम, फिर आप शब्द कौस्तुभ को पढ़िए, शब्द कौस्तुभ ग्रंथ को देखिए, इससे अधिक अगर जिज्ञासा है आपको तो अधिक जिज्ञासुओं के लिए भी यहाँ पर जो है ना संकेत दिया गया कि संक्षेप में पढ़ना हो तो इस ग्रंथ को पढ़िए, और अधिक अगर आप जिज्ञासु हैं, अधिक जिज्ञासा रखते हैं, तो फिर आप शब्द कौस्तुभ को पढ़िए। इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर तत्र निर्णीतः कहा गया कि केवल निर्णीत अर्थों को, शब्द कौस्तुभ में जो निर्णीत अर्थ है माने जो निष्कर्षात्मक है, उन्हीं निष्कर्षों को हमने इस ग्रंथ में लिखा है। तो इससे क्या होगा कि निष्कर्ष केवल समझना हो तो ये ग्रंथ पढ़िए, और ये निष्कर्ष निकला कैसे, क्या क्या उस पर विचार किए गए, वो अगर समझना हो तो आप शब्द कौस्तुभ में समझिए। इस तरह से इन्होंने कौंडभट ने यहाँ पर तीन बातों को बताया मंगलाचरण की व्याख्या के क्रम में। एक पहली बात थी कि उद्धृता का कर्ता कौन है, तो अस्माभि, अस्माभि मतलब भर्तृज दीक्षित, तो यहाँ पर उद्धृत करने वाले कौन हैं, तो भर्तृज दीक्षित हैं। दूसरी बात बताई कि भाष्याभ्य शब्द कौस्तुभ उद्धृतः, ये यहाँ पर भाष्य की चर्चा करना क्यों प्रासंगिक था, क्यों आवश्यक था, तो कहा कि लोग ये न समझे कि ये ग्रंथ जो है, आधुनिक किसी के द्वारा बनाया गया है, इसी बात को निषेध करने के लिए यहाँ पर भाष्य का उल्लेख किया गया, प्रामाणिकता को बताने के लिए भाष्य का उल्लेख किया गया। फिर तीसरी बात इन्होंने कही कि तत्र निर्णीतः क्यों कहा, इसका जवाब दिया कि तत्र निर्णीतः कहने से ये होगा कि यहाँ पर केवल निष्कर्ष कहा गया है, निष्कर्ष समझना हो तो आप व्याकरण भूषण कारिका को समझिए, अगर निष्कर्ष के से ज़्यादा आपको जिज्ञासा हो कि निष्कर्ष ये बना कैसे, तो फिर आप शब्द कौस्तुभ को पढ़िए। इस तरह से इन्होंने तीन बातों को यहाँ पर अपनी व्याख्या में बताया। अब इस यहाँ पर समाप्त होता है मंगलाचरण का प्रकरण। अब धात्वर्थ निर्णय की शुरुआत होती है। मैंने आपको भूमिका के क्रम में बताया था कि यह जो धात्वर्थ निर्णय है यह बहुत बड़ा प्रकरण है, कम से कम एक साल इसको पढ़ने पढ़ाने के लिए लगेंगे। तो और ये कहा था कि पहली कारिका हम जरूर इसकी पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि स्टार्ट में इसको जरूर पढ़ना चाहिए, फिर हम उल्टी गति से शुरू होंगे। तो आज पहली वाली जो ये कारिका है, फल व्यापारी और धातु वाली कारिका, ये जरूर याद करिएगा और इसके अर्थ को आज हम समझते हैं। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि व्याकरण भूषण सार में, व्याकरण में दो तरह का विचार होता है, एक शब्द विचार होता है, एक अर्थ विचार होता है। तो इसमें अर्थ विचार किया गया है इस पुस्तक में। तो यह जो धातु अर्थ निर्णय है, इस शब्द पर गौर करिए, धातु अर्थ निर्णय माने धातु का क्या अर्थ होता है, इसका निर्णय इस प्रकरण में किया गया है। तो इस पहली कारिका जो है, इसमें धातु के अर्थ को बताया गया है। आप जैसे कौमुदी सब में पढ़े होंगे कि डुप चस पाके, पच धातु का क्या अर्थ है, तो पाक है। अस भूवि, अस धातु का अर्थ क्या है, तो भूवि माने होना। भू सत्तायाम, भू धातु का अर्थ क्या है, सत्ता। तो ये सब जो आपने धातु का अर्थ पढ़ा था ना, ये सब विशेष अर्थ थे। विशेष अर्थ होता है जो कि स्पेशल धातु का स्पेशल अर्थ होता है, किसी खास धातु का खास अर्थ होता है, वह विशेष अर्थ होता है। लेकिन यहाँ जो धातु अर्थ निर्णय प्रकरण में आपको अर्थ बताया जाएगा, ये सामान्य अर्थ को बताया जाएगा। ये सामान्य अर्थ क्या है, जो अर्थ सभी धातुओं का हो, चाहे भू धातु हो, गम धातु हो, पच धातु हो, लिख धातु हो, कोई भी धातु हो, उसका ये अर्थ तो होगा ही होगा। बाकी उनका अलग से स्पेशल अर्थ भी होगा, वो एक अलग चीज है। तो हमें स्पेशल अर्थ को इसमें नहीं पढ़ना है, इस प्रकरण में हमें सामान्य अर्थ को पढ़ना है कि धातु का सामान्य अर्थ क्या होता है, ऐसा अर्थ जो सभी धातुओं का होता हो। तो वहीं पर पहली कारिका में कहते हैं, पहले कहते हैं प्रतिज्ञातम आह। ये कौन, ये दीक्षित जी ने जो प्रतिज्ञा की थी ना फन भाषित भाष्याभ्य में, कि तत्व निर्णीत एवार्थ संक्षेपेण यह कथ्य थे, कि शब्द कोस्तु में जो निर्णीत अर्थ है उसको मैं यहाँ पर संक्षेप में बताता हूँ। तो यह जो प्रतिज्ञात था उनका कि संक्षेप में मैं निर्णीत अर्थ को बताऊंगा, तो उन्होंने अब यहाँ पर प्रतिज्ञात विषय को कहना शुरू किया प्रथम कारिका से। ये जो कारिका नंबर दो है, फल व्यापारी और धातु, ये कारिका है व्याकरण भूषण कारिका का। और इसकी व्याख्या जो है ना, जैसे प्रतिज्ञात माह, ये कौंड भट्ट का लिखा हुआ है। आगे है धातु रित्यत्र स्मृत इति वचन विपरिणामेन अन्वया, ये भी कौंड भट्ट का लिखा गया है। जो भी पंक्तियां है, फलम विक्लित्यादि, ये सब जितना भी है, ये व्याकरण भूषण सार है, कौंड भट्ट का लिखा हुआ है। केवल श्लोक श्लोक जो है, यह भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथ का यह श्लोक है। तो पहली कारिका जो है, फल व्यापारी और धातु आश्रयेतु तिंग स्मृता फले प्रधानम व्यापार तिंगर्थस्तु विशेषम। अभी तो मैंने विच्छेद करके पढ़ लिया, बिना विच्छेद करके अगर पढ़े तो होगा फल व्यापारयोर धातु राश्रयेतु तिंग स्मृता फले प्रधानम व्यापारस्तिंगर्थस्तु विशेषणम। फिर से एक बार बोलता हूँ, फल व्यापारयोर धातु राश्रयेतु तिंग स्मृता फले प्रधानम व्यापारस्तिंगर्थस्तु विशेषणम। अब इसमें सामान्य अर्थ बताता हूँ कि फल व्यापारयो हो धातु, धातु जो है वह किस अर्थ को बताता है, तो फल व्यापारयो हो फल को बताता है और व्यापार को बताता है। तो यहाँ बताने वाले को वाचक कहा जाता है, जो अर्थ को बतावे उसे क्या कहते हैं, वाचक। तो यहाँ पर अर्थ कौन है, फल और व्यापार, उसका वाचक कौन है, बताने वाला कौन है, तो धातु। वाचक माने बताने वाला, बोधक कह लीजिए, बोधक। तो फल और व्यापार अर्थ का बोधक कौन है, तो धातु, धातु है। इसका दूसरे ढंग से कहेंगे तो धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार, इस तरह से भी कहा जा सकता है। लेकिन शास्त्र की शैली में आपको यही कहना चाहिए कि फल और व्यापार की वाचक धातु है। धातु हिंदी में स्त्रीलिंग है, इसलिए की मैंने कहा कि फल और व्यापार की वाचक धातु है। और समझने के लिए धातु के दो अर्थ हैं, फल और व्यापार। फिर आगे है आश्रय हेतु तिंग स्मृता, तिंग समझते हैं ना, तिप्त जी सिप्तस्थ मिबस्मस, ये तिंग विभक्तियां हैं। तो इन तीन तिंग विभक्तियों का क्या अर्थ है, तो आश्रय आश्रय अर्थ है। इसको भी आप दो तरीके से, एक को कहने के लिए, एक समझने के लिए। कहने के लिए क्या होगा कि आश्रय का वाचक तिंग होता है, और समझने के लिए तिंग का अर्थ आश्रय होता है। जैसे पहले कहा था ना कि फल और व्यापार का वाचक धातु है, वाचक को बोधक भी कह सकते हैं, फल और व्यापार का बोधक धातु है। और समझने के लिए धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। ऐसे यहाँ पर भी कहने के लिए आश्रय का वाचक या बोधक कौन है, तिंग है। और समझने के लिए तिंग का एक अर्थ होता है क्या, आश्रय। अब ये आश्रय क्या है, फल क्या है, व्यापार क्या, ये सब बाद में हम समझेंगे। फिर आगे फले प्रधानम व्यापार। अब यहाँ बताया गया ना कि धातु जो है दो अर्थों का वाचक है, फल अर्थ का वाचक है और व्यापार अर्थ का वाचक है। तो इन दोनों अर्थों में कौन प्रधान है और कौन अप्रधान है, क्योंकि तो प्रधान तो एक ही होता है, प्रधानमंत्री एक ही होता है, बाकी तो मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर धातु के जो दो अर्थ हैं, फल और व्यापार, इसमें कौन प्रधान है, तो कहते हैं फले प्रधानम व्यापार, प्रधानम व्यापार, व्यापार जो है वह प्रधान होता है। तो फिर अगर दो ही अर्थ हैं, फल और व्यापार, उसमें अगर व्यापार प्रधान हो गया तो अप्रधान कौन होगा, फल अप्रधान होगा, स्वतः सिद्ध है ना। तो फले प्रधानम व्यापार माने फल और व्यापार में व्यापार ही जो है वह प्रधान होता है और फल अप्रधान होता है। तिंगर्थस्तु विशेषणम, और तिंग का अर्थ ऊपर में बताया था ना, आश्रय तु तिंग स्मृता, कि तिंग का अर्थ क्या है, तो आश्रय है। तो वही कहते हैं वह जो आश्रय अर्थ है, तिंगार्थ तिंग का अर्थ जो आश्रय है, वह क्या होता है, विशेषणम, वह विशेषण होता है। यहाँ एक बात आप समझ लीजिए कि जो प्रधान होता है ना, वह होता है विशेष्य, और विशेषण जो होता है वह अप्रधान होता है। इसे बोलता हूँ, विशेष्य प्रधान होता है और विशेषण अप्रधान होता है। अब जैसे नीलम कमलम, तो नीलम क्या है, विशेषण है, कमलम क्या है, विशेष्य है। तो कमलम जो है वह प्रधान होगा विशेष्य होने के कारण, और नीलम जो है वह अप्रधान होगा विशेषण होने के कारण। तो तिंग का अर्थ जो आश्रय है वह विशेषण है माने अप्रधान है। ऐसे ही फले प्रधानम व्यापार में व्यापार प्रधान है और फल अप्रधान है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार विशेष्य होता है और फल जो है उसका विशेषण होता है। इस तरह से संक्षेप में हमने इस कारिका का अर्थ बताया। थोड़ा और इस कारिका के बारे में मैं अगले पाठ में बताऊंगा, आज यहीं तक रखते हैं।